上帝，王立杰雷提，25 अगस्त 1968 दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। जो बाप नाले जा करके कल्प कल्प समझाते हैं वो कोई नई बात नहीं है। हाँ, इतनी नॉलेज है कि उसमें गुह्यता आती जाती है। बाप कहते हैं मैं तुमको गुह्यतम ज्ञान सुनाता हूं, जैसे मनुष्यों की लिखी हुई गीता में कहा है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। तो गुह्यराज बाप आकर के समझाते हैं, आत्मा की ही समझाने देखो अभी तुमको कैसे मिलती है। इतनी छोटी सी पिचकरी आत्मा, उसमें इतना 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है और ऐसा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो कब विनाश नहीं होता है, तो कितनी गुह्यतम नॉलेज है। इसको वंडर ही कहें और क्या कहें। ये पार्ट कब विनाश नहीं होता है, इसलिए इसको अविनाशी कहा जाता है। पार्ट भी अविनाशी और आत्मा भी अविनाशी। आत्मा ही 84 जन्म भोगती है, आत्मा ही बुलाती है कि हे फलाने इधर आओ। आत्मा नहीं, कानों द्वारा सुना। तो बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, तुम आत्मा यहां आकर के पार्ट बजाती हो शरीर द्वारा। वहां तो न शरीर होते हैं और न आत्मा का कोई पार्ट चलता है। यहां शरीर है तो पार्ट भी चलता है, शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कोई जवाब नहीं मिलता। अभी बाप कहते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुमको वापस जाना है। जब ये पुरुषोत्तम संगम युग आता है तब तुमको वापस जाना होता है, और वापस जाने के लिए पवित्रता मुख्य बात है। जो आत्मा जितनी पवित्र होगी वो पहले पहले परमधाम वापस जावेगी, वहां शांति धाम में सब पवित्र आत्माएं ही जाती हैं। शांति धाम और सुख धाम ये दोनों ही पवित्र धाम हैं। वहां उत्तरोत्तर पवित्र आत्माएं ही पहले जाती हैं। शांति धाम में भी पवित्र आत्माएं ही जाती हैं, वहां शरीर नहीं होते हैं। सुख धाम में शरीर भी होता है, पवित्र आत्मा भी होती है। शांति धाम में बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है, और सुखधाम में तो थोड़ी थोड़ी बैटरी डिस्चार्ज होती भी है। यहाँ इस दुनिया में शरीर धारण करने पर मोटर चलती है तो बैटरी कम होती जाती है, मोटर नहीं चलेगी तो बैटरी कम नहीं होगी। पच्चीस आठ अड़सठ की वाणी का तीसरा पेज। अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योति बहुत कम हो गई है। हाँ, ये कहेंगे कि एकदम बुझ नहीं जाती है, दुनिया में भी भक्ति मार्ग में ये रस्म चलती है, जब कोई मरता है तो उनका दीवा जलाते हैं। फिर उस दीवे की बहुत संभाल करते हैं। आत्मा की ज्योति कब बुझती नहीं है, वो तो अविनाशी है। तो फिर दीवा क्यों जलाते हैं? भक्ति मार्ग में जो दीवा जलाते हैं वो संगम युग की यादगार है कि आत्मा की बैटरी जब उंजियानी हो जाती है तो बाप आकर के सभी आत्माओं का दीपक जगाए देते हैं। और इन दीपकों की बहुत संभाल की जाती है। बाप जानते हैं ये बहुत लवली बच्चे हैं, जो काम चिता पर बैठ करके भस्म हो गए थे, अभी फिर उनका दीवा जगावेंगे। ये बच्चे बिल्कुल ही तमो प्रधान मुर्दे बन गए थे, इतने मुर्दे बन गए कि कोई भी बाप को जानते ही नहीं। बाप आते भी हैं, अपनी पहचान भी देते हैं, तो भी बाप को नहीं जानते। अभी मनुष्य कोई काम के नहीं रहे हैं, मनुष्य की मिट्टी भी कोई काम की थोड़े ही होती है। ऐसे भी नहीं कि बड़े आदमियों की मिट्टी कोई काम की होती है। नहीं, गरीबों की भी मिट्टी कोई काम की नहीं। मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है। फिर कल बल कोई बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, आत्मा चली जाती है तो मिट्टी को जला देते हैं। कोई तो फिर कब्र में बंद करते हैं, मिट्टी में दाब देते हैं। कौन? हिंदुओं में जलाते हैं और मुसलमानों में मिट्टी में दबाए देते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि संगम युग में जब बाप आते हैं तो जो देवी देवता सनातन धर्म के बच्चे हैं वो अपने देह अभिमान रूपी मिट्टी को पूरा ही जलाए देते हैं। और नई दुनिया में जाते हैं, इस्लाम धर्म आदि दूसरे धर्म की जो आत्माएं हैं वो अपने देह अभिमानी की मिट्टी को पूरा जलाए नहीं पाती। इसलिए उनके धर्म में ये परंपरा चली आ रही है कि वो अपनी मिट्टी को मिट्टी में दबाए देते हैं, कब्र दाखिल करते हैं। जो पारसी लोग होते हैं वो कुएं पर रख देते हैं ताकि पक्षी लोग आकर के मांस खा जाएं। उनका मांस भी काम में आ जाए, बाकी हड्डियां जाकर नीचे पड़ती हैं वो भी काम में आ जाती है, खाद बन जाती है। तो देखो हर एक धर्म की अपनी अपनी रस्म है। दुनिया में जो ढेर मनुष्य मरते हैं, ढेर की ढेर हड्डियां निकलती होंगी। अभी तुमको तो अपने आप ही शरीर छोड़ना है, तुम यहां आए हो ये शरीर छोड़ करके घर जाने के लिए, अर्थात मरने के लिए आए हो। तो तुम खुशी से जाते हो और धर्म वाले इतनी खुशी से नहीं जावेंगे। तुम जानते हो कि हम तो जीवन मुक्ति में भी जावेंगे। तो जिन्होंने जो पार्ट बजाया है वो अंत तक बजावेंगे, बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे और साक्षी होकर के देखते भी रहेंगे, क्योंकि ये तो समझ की बातें हैं, इसमें डरने की भी कोई बात नहीं है। हम स्वर्ग में जाने के लिए आप ही पुराने शरीर को छोड़ देते हैं। पुराना शरीर छोड़ते हैं तो जरूर स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं। स्व आत्मा को कहा जाता है, जो आत्मिक स्थिति में जाते हैं वो ही स्वर्गीय सुखों का अनुभव करते हैं। तो बच्चों को बाप को याद करते रहना है ताकि अंत मते सुगति हो जावे, इसी बात में मेहनत है। और हरेक बच्चे की पढ़ाई में मेहनत लगती है, भगवान को आकर के पढ़ाना जरूरी है। ऐसे नहीं कि ऊपर बैठे बैठे प्रेरणा से पढ़ाई पढ़ाई देते हैं, नहीं, जरूर बड़ी पढ़ाई होगी जो भगवान को आकर के पढ़ाना पड़ता है। इसमें दैवी गुण भी चाहिए, क्योंकि ये ऊंचे ऊंचे लक्ष्मी नारायण बनना है, ये तो ऊंचे ऊंचे युग में सतयुग के आदि में थे। तुम भी सतयुगी देवता बनने आए हो तो तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट कितनी ऊंची है। त्रिमूर्ति में क्लियर है, क्योंकि अगर ये ब्रह्मा विष्णु आदि के चित्र न होते तो समझाते भी कैसे। ये भी जानते हो कि ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। कौन से युग में? संगम युग में। और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लग जाते हैं। ब्रह्मा की 8 भुजाएं, 10 भुजाएं, 100 भुजाएं, 1000 भुजाएं भी दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के ही इतने सहयोगी बच्चे बनते हैं। कितने ढेर के ढेर बच्चे हो जाते हैं। तो उन्होंने फिर अनेक भुजाओं वाला चित्र बना दिया है। बाकी ऐसे नहीं कोई मनुष्य इतनी भुजाओं वाला होता है। रावण के 10 सिरों का भी अर्थ है। रावण का चित्र बनाते हैं तो जरूर चरित्र करने वाले भी कोई होंगे। 10 चेहरे दिखाए हैं। तो कहेंगे 10 धर्मों के 10 चित्र हैं, जो पहले सतो प्रधान होते हैं, बाद में तमो प्रधान बन जाते हैं। बाकी कोई ऐसा मनुष्य नहीं होता है जो 10 सिरों वाला हो। और ये 10 सिरों का राज बात ही बैठ करके समझाते हैं। पांच विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के। स्त्री का नाम शास्त्रों में क्या दिया है? है मंदोदरी। उदर माना पेट। पेट कहते हैं बुद्धि को। कहते हैं ना, तुम्हारे पेट में बात पचती नहीं है, तो ये बुद्धि रूपी पेट है जो मंदोदरी को मंद बुद्धि दिखाया गया है। ये प्रकृति के 5 सिर हैं। प्रकृति माता होती है, मंद बुद्धि दिखाई गई है, इसलिए प्रकृति को जड़ कहते हैं। पुरुष आत्मा को चैतन्य कहा जाता है। रावण बड़ा प्रकांड विद्वान दिखाया गया है। परंतु विकारी होने के कारण वो विकारी बुद्धि किसी काम की नहीं रहती। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। ये खेल है राम और रावण का। सतयुग आज में होता है राम राज्य, कलयुग अंत में वही राम रावण बन जाता है, कृष्ण कंस बन जाता है। आज में होती है सतो प्रधान स्टेज और अंत में होती है तमो प्रधान स्टेज। इस बात का दुनिया में कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर के समझाते हैं कि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी ड्रामा भी कब से शुरू हुआ? कह देते हैं परंपरा से। अरे वो परंपरा भी कब से शुरू हुई? تو کوئی جانتے نہیں ہے. تم بچے تو جانتے ہو یہ پرمپرا سنگم یوگ سے شروع ہوتی ہے. تو یہ باتیں بیٹھ میٹھے میٹھے بچوں کو باپ پڑھاتے ہیں. وہ باپ باپ بھی ہے, پڑھانے والا ٹیچر بھی ہے, اور سدگتی دینے والا گرو بھی ہے. بدھی کی ہی پہلے سدگتی کرتے ہیں. تو بچوں کو کتنی خوشی ہونی چاہیے. یہ جو میوزیم آج تم کھولتے ہو یہ کس کے ڈائریکشن سے کھولتے ہو؟ میوزیم ہو, سینٹر ہو, گیتا پاٹھشالائیں ہوں, باپ کے ڈائریکشن سے کھولتے ہو نا. یہاں تو ہیں ہی ماں باپ اور بچے, اور بچے بھی ڈھیر کے ڈھیر ہیں. تو باپ کے ڈائریکشن پر ڈھیر کے ڈھیر میوزیم, سینٹر, گیتا پاٹھشالائیں آدی کھولتے رہتے ہیں. ان سب کو کیا دیکھنا؟ ایک کو دیکھا مانا دس کو دیکھا. گیتا پاٹھشالا ہو, سینٹر ہو, میوزیم ہو, ان کی امپروومنٹ کرتے جاتے ہیں. میں بھی بھلا جا کر کے کیا کروں گا؟ بابا کوئی سے بات تو کرتے نہیں ہے. کہتے ہیں تم کہتے ہو بھگوان واچ رتھ دوارا, تو بھگوان کو کہتے ہیں کہ اے بھگوان ہم کو ساکشاتکار کراؤ. ارے تم ساکشاتکار کیا کریں گے؟ تم نے اپنی آتما کا ساکشاتکار کیا ہے, اور آتما کا بھی کیا ساکشاتکار کریں گے؟ آتما تو اتنی چھوٹی بندی ہے کہ نہ آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. آتماؤں کا باپ پرم پتا پرماتما بھی چھوٹی بندی ہے, تو ان کا تم کیا ساکشاتکار کریں گے؟ تو ساکشاتکار آج کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو آتما کو بدھی سے سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ آتما اتی سوکشم اسٹار مثل پرکرتی کے بیچ میں رہتی ہے. جس کے آدھار پر یہ اتنا بڑا دمب جسے شریر کہا جاتا ہے چلتا رہتا ہے, اور آتما اپنا پارٹ بجاتی رہتی ہے. ابھی تمہارے پاس نہ لائٹ کا ہے اور نہ رتن جڑت تاج ہے. دونوں ہی تاج لینے کے لیے تم ابھی پرشارتھ کر رہے ہو. پرشارتھ کرتے کرتے آتما جب سمپن اسٹیج کو پکڑے گی تو تمہاری آنکھوں میں, تمہارے چہرے میں, مستک میں لائٹ کا تاج بھی آ جائے گا, اور پھر رتن جڑے تاج بھی ملے گا. अभी तुम दोनों प्रकार का ताज लेने के लिए पुरुषार्थी हो। कल्प कल्प तुम बाप से वर्षा लेते हो। तो बाबा पूछते हैं कि हे बच्चे, तुम आगे भी कभी मिले थे? तो बच्चे कहते हैं, हाँ बाबा, हम कल्प कल्प मिलते हैं। क्यों मिलते हो? मिलते हैं लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। बस सभी बच्चे एक ही बात बोलेंगे। बाप कहते हैं, तुम तो सो बात बोलते हो। अभी फिर से पुरुषार्थ करो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा बनेंगे। अभी सबको नर से नारायण नारी से लक्ष्मी ही तो बनना है ना। फिर बाप कहते हैं, प्रजा भी चाहिए। प्रजा तो ढेर की ढेर बनती है, तो जरूर है कि पुरुषार्थ करने वाले बहुत थोड़े बच्चे निकलते हैं। कथा भी घर घर में भक्ति मार्ग में शक्ति नारायण की होती है। सतयुग में तो आठ नारायण होते हैं, परंतु कथा एक ही लक्ष्मी नारायण की गाई जाती है। समझा जाता है कि नारायण है तो जरूर लक्ष्मी भी होगी, बाकी अलग से नाम लक्ष्मी का नहीं देते हैं। नाम किसका देते हैं? नारायण का नाम देते हैं। तो बोलो, कथा तो सुनते हैं परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता है, क्योंकि कथा सुनाने वाले सत्यनारायण की कथा ही नहीं सुनाते हैं। लीलावती, लकड़ाहारा, ऐसी ऐसी कथाएं सुनाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे तो सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनते हो। जानते हो ये सच्ची कथा सुन करके हम सत्यधाम में चले जाएंगे। वो है निराकारी दुनिया। निराकारी दुनिया में तुम आत्मा सच्ची स्टेज में जाकर के बैठेंगे। इसलिए उसको सत्यधाम कहा जाता है। फिर वहां से जावेंगे सुखधाम में। और सुखधाम में ले जाने वाला भी एक ही बाप है। वो कौन सा बाप है? हैं? जो सुखधाम में ले जाता है। आत्माओं का बाप तो परमधाम में ही बैठ जाता है, फिर सुखधाम में कौन सा ले जाता है? जरूर कहेंगे कि मनुष्य सृष्टि का ही बाप है, जो हमको शांति धाम से सुखधाम भी ले जाता है और इस दुखधाम से छुड़ाकर शांति धाम भी ले जाता है। सन्यासी तो सिर्फ शांति धाम तक ही जाने की शिक्षा देते हैं। सहज राजयोग के ज्ञान का उन सन्यासियों को विचारों को पता ही नहीं है। तो तुम कोई को भी समझाओ तो बोलो कि अभी आत्माओं के बाप के घर वापस जाना है, वो हम आत्माओं का भी घर है, हम आत्माओं के बाप का भी घर है, इसलिए अभी बाप को याद करो। और तुम बच्चे ही बुलाते हो कि आओ, आकर के हमको इस दुखों की दुनिया से लिबरेट करो, मुक्ति दो। अभी बाप आए हैं, अपना परिचय भी देते हैं, फिर भी उस बाप को जानते ही नहीं। बाप तो कहते हैं कि जान करके बाप से पूरा वर्षा ले लो। ओम शांति। ये 23-8-68 की वाणी का कोई बचा हुआ हिस्सा है, तीसरे पेज का। हर 5-4 वर्ष के बाद तुम बच्चों को बेहद का सुख मिलता है। द्वापर कलयुग में अल्पकाल का सुख होता है, उसको हद का सुख कहेंगे। और बाप आकर के स्वर्ग की नई दुनिया का बेहद का सुख देते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं आज उन कलयुग की आयु इतने लाखों वर्ष है, इस बात में बहुत बहस करते हैं, परंतु उन बहस करने वालों को समझाना है इस दुनिया में दिन और रात दोनों ही होते हैं। रात में अंधेरा होता है, दिन में उजियाला होता है। रात में ठोकरें खानी पड़ती हैं, दिखाई नहीं पड़ता है। और रोशनी हो जाती है तो सोजरा ही सोजरा हो जाता है। तो ये मनुष्य सृष्टि ड्रामा भी सुख और दुख का ड्रामा बना हुआ है। सुख होता है सोजरे से, सोजरा ज्ञान को कहा जाता है। ज्ञान की रोशनी को कहा जाता है। भगवान बाप ज्ञान सूर्य के मुआफिक है, अज्ञान का अंधकार दूर कर देते हैं। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो सुख का रास्ता मिल जाता है, सुख की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। नाम ही है स्वर्ग, स्वर्ग अर्थात स्वस्थिति में गया हुआ। ये स्वस्थिति की पहचान बाप ही आकर के देते हैं। वो बाप सदैव ही स्वस्थिति में रहने वाला है, और जो भी आत्माएं हैं वो सदैव स्वस्थिति में रहने वाली नहीं है, इसलिए जन्म मरण के चक्र में आती है। जन्म मरण के चक्र में आने के कारण ज्ञान को भूल जाती है, आदि मध्य अंत को भूल जाती है, वर्तमान भी याद नहीं रहता, भविष्य भी याद नहीं रहता, पास्ट भी याद नहीं रहता। और वो परमपिता परमात्मा तो सदैव ही स्व स्थिति में रहने वाला है। वो सदा शिव कहा जाता है क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। वो ही आकर के बताता है कि बच्चे इस दुनिया में आधा समय है सुख और आधा समय है दुख। जो सुख की दुनिया है वो मैं भगवान बाप ही आकर के स्थापन करता हूं। उस सुख की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है और वो ही सुख की दुनिया जब पुरानी हो जाती है तो दुख की दुनिया बन जाती है। जैसे लौकिक दुनिया में भी कोई बाप होते हैं, बच्चों के लिए नया मकान बना के देते हैं तो उसमें सभी तरह की सुख सुविधाएं होती हैं। जब तक मकान सत्वप्रधान स्टेज में रहता है, फिर जब मकान पुराना होता है, टूट फूट होने लगती है तो दुखदायी हो जाता है। तो ऐसे ही ये दुनिया भी एक मकान के मुआफिक है। भगवान बाप आकर के तुम बच्चों के लिए नया मकान देते हैं। उस नए मकान में जाने के लिए कहते हैं कि बच्चे बाप समान स्वयं स्थिति को धारण करो, आत्मिक स्टेज में रहेंगे, स्वकीय स्थिति में रहेंगे तो स्वर्ग में जावेंगे। अगर देवान में रहेंगे, बाप की बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो नरक की दुनिया में जाकर जन्म मिलेंगे, कल्प कल्प की बाजी हार जावेंगे। तो उस दुनिया में आधा समय सुख अर्थात स्वर्ग और आधा समय नरक होता है। नरक तब होता है जब नर करता है, नर मनुष्य को कहा जाता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि साहब नर हैं। इन मनुष्य गुरुओं के द्वारा जो भी धर्म स्थापन किए गए वो सब नरक पैदा करने वाले हैं, दुनिया को नीचे गिराने वाले हैं, दुनिया में अंधियारा फैलाने वाले हैं। ये अज्ञान का अंधियारा फैलाते हैं। बाप तो ज्ञान सूर्य है, ज्ञान की रोशनी दे करके हम बच्चों को स्वर्ग में भेज देता है। तो ऐसे नहीं है कि दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, नहीं, 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है। इस 2500 वर्ष की हिस्ट्री में दूसरे धर्मों की हिस्ट्री मिलती है। इब्राहिम का इस्लाम धर्म, बुद्ध का बौद्ध धर्म, क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म आदि आदि, ये अनेक प्रकार के द्वैत फैलाने वाले धर्म जब इस सृष्टि पर आते हैं तो दो दो मतें, दो दो बातें पैदा हो जाती हैं। धर्मों में द्वैतवाद पैदा होता जाता है, परंपराएं आपस में टकराती हैं, मनुष्य आपस में झगड़ते हैं। राज्यों की आपस में टक्कर होती है, एक कुल दूसरे पर हमला करता है तो दुनिया में दुख पैदा हो जाता है। लोगों को पता ही नहीं रहता इस दुनिया का एक बाप कौन है जो भाईचारा पैदा कर सके। तो ये 2500 वर्ष की जो मनुष्यों की पैदा की हुई दुनिया है इसमें दुख होता है, इतना दुख होता है कि मनुष्य दिन गिनना शुरू कर देते हैं, तवारीखें शुरू होती है क्राइस्ट का संबत दिन गिनने के लिए, विक्रम संबत दिन गिनने के लिए, शक संबत दिन गिनने के लिए, हिजरी संबत दिन गिने जाते हैं। तो दुख में लोग दिन गिनते हैं या सुख में गिने जाते हैं? जब दुख पड़ता है तो एक एक दिन गिना जाता है, तब हिस्ट्री बन जाती है। ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है, लेकिन इससे पहले जब ये मनुष्यों के स्थापन किए हुए धर्म संसार में नहीं थे तब ईश्वर का राज्य था। वहां ईश्वर कोई राज्य नहीं करता है, लेकिन ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य होता है जहां देवताएं राज्य करते हैं, वो सुख का राज्य होता है। वहां कोई भी दिन नहीं गिनता, समय की वहां गिनती नहीं होती है, वो भी 2500 साल का है। तो 2500 साल सुख की दुनिया और 2500 साल दुख की दुनिया, ये सुख दुख का खेल है। इसमें बहस करने की बात नहीं है कि शास्त्रों में तो ऐसे लिखा हुआ है। बोलो, शास्त्र तो मनुष्यों के लिखे हुए हैं और मनुष्य सब विकारी होते हैं। विकारी बुद्धि के होने के कारण मनुष्यों का मन चंचल होता है, चलायमान होता है। जो भी मनन चिंतन करते हैं गड्ढे में जाने के लिए करते हैं। आज मनुष्यों का मनन चिंतन इतना तामसी हो गया कि जिस दुनिया में बैठे हैं उस दुनिया को भस्म करने के लिए एटम बम बनाए हुए हैं। ऐसी तामसी बुद्धि बन जाती है। तो ये ड्रामा का राज समझाना पड़ता है। अगर कोई नहीं समझते हैं तो छोड़ दो, आगे चल करके जब भूकंप आवेंगे, बम फटेंगे तो आप ही समझ जाएंगे। उस समय बाप का परिचय देने से भी एक्यूरेट समझ जाएंगे। समझेंगे कि सुप्रीम बाप का स्वर्ग का वर्षा है और इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि गुरु जो मनुष्य गुरु हैं उनका नरक का वर्षा है। पहले भारत में स्वर्ग था, पैराडाइज था, अभी नहीं है। अभी भारत में भी ढोर अब नरक है। पहले भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, अभी उन देवी देवताओं का राज्य नहीं है। अभी फिर से स्थापन हो रहा है। ये हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती रहती है, स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग। इन बातों को समझाने के लिए ये गोला और झाड़ का चित्र मुख्य है। जो यूरोपियन लोग होंगे वो भी इन चित्रों से समझ जाएंगे, उनकी बुद्धि में भी आवेगा कि हम तो पैराडाइज में आ नहीं सकेंगे। भले पैराडाइज था और वो पैराडाइज योग बल से स्थापन हुआ था, हम कैसे जानना चाहते हैं? वो तुम भी आकर के समझो। भारत का प्राचीन राजयोग जिससे भारत पैराडाइज बना, वो प्राचीन राजयोग यहां भी समझाया जाता है, सिखाया जाता है। अच्छा, बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। जगदम्बा वाली जो आत्मा है उसका ओरिजिनल जहां से होता है कोई तो सेंटर से ओरिजिन हुआ होगा, निकास हुआ होगा कि नहीं, बेसिक से हुआ होगा या डायरेक्ट एडवांस से हुआ होगा? हैं? बेसिक से ही हुआ होगा। तो वो बेसिक का सेंटर कौन से धर्म वाली आत्मा के रहबरी में चलता होगा? हैं? हैं? इस्लामी नहीं, सिख धर्म भी नहीं है, वो आर्य समाजी आत्मा है। जगदीश भाई के अंडर में चल रहा था वो सेंटर, जहां से फाउंडेशन पड़ता है देवी देवता सनातन धर्म के आधार मूर्त आत्मा का। जो आधार मूर्त होते हुए भी बीज है, और जगदीश भाई कौन से धर्म से कनेक्टेड है? आर्य समाज से। आर्य समाज में जो यादगार है वो कौन से पक्षी की विशेष यादगार है? जिनको श्राद्ध का भोजन खिलाया जाता है, कौए। और काग बिस्ता भी बहुत प्रसिद्ध है। काग बिस्ता किसे कहा जाता है? कागविष्ठा कहा जाता है कि मनुष्य जो खाता है उस मनुष्य के खाने के बाद जो खून है वो शरीर में चला जाता है खाना खाने के बाद, और जो कचरा रहता है जिसे हम विष्ठा कहते हैं उसे कौआ खाता है। क्या एक कौआ कचरा खाता है, ये बात कैसे साबित होती है? ये दुनिया का आखिरी धर्म है या बीच का धर्म है या आदि का धर्म है? आखिरी धर्म है। तो आखिरी धर्म में आखिरी जो धर्म पिता होगा, जो भी ज्ञान सुनाएगा, वो ऊपर से आने वाले अनेक जो धर्मात्माएं हुए हैं उनका सुना सुनाया पचा पचाया वो ही सुनाएगा या कुछ नई बात सुनाएगा? वो ही सुनाएगा, क्योंकि ये सत्ययुग का आखिरी नारायण है। आखिरी जो नारायण होता है उसका ज्ञान भी आखिरी स्टेज का तमो प्रधान ज्ञान होगा, विस्तार को पाया हुआ ज्ञान होगा या सार स्वरूप ज्ञान होगा? विस्तार को पाया हुआ ज्ञान होता है। वो चाहे बेसिक हो और चाहे एडवांस क्यूब कोई बीज रूपात्मा हो, वो ज्ञान के बहुत ही विस्तार में जाने वाली होती है। तो बेसिक में तो सबको मालूम है कि ज्ञान का सबसे जास्ती विस्तार कौन सी आत्मा ने किया है? जल्दी से ढेर सारे मोटे मोटे ग्रंथ छपाई दिए, खूब ज्ञान का विस्तार कर दिया, तो सबसे जास्ती तमोप्रधान कौन बना है? वही सातवां नारायण। वो क्या खाता है? मनुष्यों ने जो खाया उसका बचा हुआ कचरा खा जाता है, उस कचरे में से जो कुछ तंत निकलता है उससे परवरिश होती है पीपल के वृक्ष की। पैदाइश होती है, तो जहां ऐसी पैदाइश होगी वो पैदाइश जब तमो प्रधान बनेगी तो गोरा पार्ट बजाएगी या काला पार्ट बजाएगी? महाकाली का पार्ट बजाती है। जगदम्बा सत्व प्रधान स्टेज का नाम है और महाकाली तमो प्रधान स्टेज का नाम है। जगदम्बा जब तमो प्रधान बनती है तो उसका कारण यही होता है कि अंतिम जन्म में जाकर के वो आर्य समाजियों के पूरे प्रभाव में आ जाती है। आज की दुनिया में जो भारत में राज्य चल रहा है वो कौन से धर्म वालों का राज्य चल रहा है? हैं? कौरव कांग्रेसियों का राज्य चल रहा है। लेकिन उस राज्य में भी जो प्रधानमंत्री बन के बैठा है वो कौन से धर्म का है? सिख धर्म का। माना ओरिजिन रूप में भले जगदम्बा वाली आत्मा वो आत्मा है जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला है कि कन्यादान में पंजाब का खून सबसे आगे गया। पंजाब में कौन सा धर्म फैला हुआ है? सिख धर्म। तो है तो ओरिजिनली सिख धर्म की आत्मा, लेकिन ज्ञान का फाउंडेशन कहां से पड़ता है? खाद कहां से लेती है? हैं? आर्य समाजी धर्म ओ सेंटर से, और जहां से खाद लेती है वहां का गायन भक्ति मार्ग में पड़ा हुआ है कि कौए की विष्ठा की खाद से पीपल का जो बीज है वो फलीभूत हो जाता है। यादव भाई ने एक प्रश्न लिख करके भेजा है, बाबा हम बच्चों के मुकाबले आपको तो बाप की याद करना और ही सहज है, क्योंकि आपको अपनी आत्मा को और बाप की आत्मा को अपनी ही प्रकृति में देखना होता है और याद करना होता है, तो आपको तो सहज हो जाता है, लेकिन हम बच्चों को अपनी आत्मा को अपनी प्रकृति में और बाप की आत्मा को मुकर्रर रथ की प्रकृति में देखना और याद करना होता है। आपके बताए हुए तरीके से बाबा इस याद की है ना, इस साल की प्रैक्टिस के बावजूद
10 साल
अच्छा तरीके से बाबा 10 साल की याद से प्रैक्टिस के बावजूद भी हम अब तक इमेजिन माने कल्पना ही कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में अपनी आत्मा को और बाप की आत्मा को बुद्धि रूपी नेत्र से या ज्ञान के नेत्र से अभी भी देख नहीं पा रहे हैं, ज्ञान का नेत्र से देख नहीं पा रहे हैं, अनुभव भी नहीं कर रहे हैं। तो बाबा हमारे पुरुषार्थ में क्या कमी है सो बताइए, है हमारे पुरुषार्थ में कमी है या याद की प्रक्रिया में कमी है? हाँ? अरे सबका अनुभव यही है या नंबर वार है? हैं?
नंबर वार
है, माने कोई ऐसे भी हैं जो ज्ञान के नेत्र से अपनी आत्मा को भी देख लेते हैं कि स्टार है, स्टार की तरफ बुद्धि टिकती है, और अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो दूसरी आत्मा के भी नैनों के बीच में भ्रकुटी में आत्मा को देखने का अभ्यास करते हैं और अनुभव करते हैं कि दूसरा भी आत्मा है, लेकिन बाबा तो कहते हैं बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, आंखें बहुत धोखा देती हैं, 10-20-50 भूलें तो रोज ही करते होंगे, तो जब दूसरे को देखते हैं या खास करके एंटी सेक्स की तरफ बुद्धि जाती है, नेत्र जाते हैं, देखते हैं, तो गलती होती है या नहीं होती है? हैं? और सबको एक जैसी गलती होती है या नंबरवार होती होगी? हैं? बोलो, नंबरवार होगी। यज्ञ के याद में कुछ आत्माएं ऐसी थी जो एकदम आज में ही उन्होंने जन्म लिया, बाप का बच्चा बनी, और उन आदि के बच्चों के लिए बोला है कि उन्होंने जो दीदी दादियां हैं उनको भी श्रृंगार किया है। वो बच्चे कौन हुए? कौन सी लिस्ट में हुए? अष्टदेव। वो अष्टदेवों की लिस्ट में आने वाले बच्चों को इस वर्तमान जन्म में एडवांस में आया हुआ ज्यादा से ज्यादा कितना पुराना बताया है? ये भी बताया है अद्वैतवाणी में कि वो बच्चे ज्यादा से ज्यादा कितने पुराने समय से यज्ञ में आए हैं, एडवांस में आए हैं, हैं? हैं? वो तो कई साल पहले बोला ना, माना 94-95 की बात हो गई ना, इससे ज्यादा पुराने तो नहीं हुए, हुए या नहीं? नयों की लिस्ट में है या एडवांस में पुरानों की लिस्ट में कहे जाएंगे? नयों की लिस्ट में कहे जाएंगे, लेकिन नयों की लिस्ट में होते हुए भी उनका पुरुषार्थ आत्मिक स्टेज का होगा या नहीं होगा? हैं? आत्मिक स्टेज का होगा। और जो आत्मिक स्टेज का पुरुषार्थ वाला होगा उसकी पहली पहचान ये होगी, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, माने देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से उपराम नंबर वार जरूर दिखाई देगा प्रैक्टिकल जीवन में। अगर प्रैक्टिकल जीवन में ये नष्टो मोहा की विशेष सिफ्त दिखाई नहीं देती है अभी वर्तमान जीवन में, तो अष्टदेवों की लिस्ट में नहीं हो सकते। तो वो आत्माएं यज्ञ के आदि में थी या नहीं थी? थी। वर्तमान जन्म में उनकी उम्र 60-70 साल से ऊपर होगी या नीचे होगी? हैं? नीचे ही होगी। इसलिए वो यूथ ग्रुप के हुए या वयोवृद्ध ग्रुप के हुए? यूथ ग्रुप के हो गए। इसका मतलब यह है यज्ञ के आदि में जो थे और अंत में अभी दूसरा जन्म लेकर के फिर एडवांस में आए हैं, उनकी आत्मिक स्थिति जल्दी बनेगी उनके मुकाबले जो यज्ञ के आदि में थे ही नहीं। यज्ञ के आदि में नहीं थे उनकी एज क्या होगी? हैं? 70 साल से ऊपर होगी। तो जो 70 साल से ऊपर वाले हैं वो एडवांस में कैसे आ गए?
पूर्व जन्मों के राम बाप के साथ।
हाँ, वो एडवांस में इसलिए आ गए कि पूर्व जन्मों के जो हिसाब किताब हैं वो राम वाली आत्मा के साथ संग और साथ के ज्यादा हैं, इसलिए एडवांस का ज्ञान उनको जल्दी बुद्धि में बैठ गया। बाकी इस जन्म में और पिछले जन्म में यज्ञ के अंदर वो नहीं थे, वो यज्ञ के आदि का फाउंडेशन उनके अंदर नहीं पड़ा। इसलिए हो सकता है कि वो बीज रूपी स्टेज जो बननी चाहिए वो नहीं बन पाती है। फिर इस जीवन का संग का रंग भी देखा जाता है। इस जीवन के पुरुषार्थी समय में जो संग है वो कैसा है वो भी प्रभावित करता है। ज्ञान की पराकाष्ठा भी प्रभावित करती है। जो गीता पाठशालाएं हैं उनमें दोनों पहिए अगर एक जैसे हैं तो प्रभाव अच्छा पड़ेगा, और दोनों पहियों में से एक जाम है तो गाड़ी वहां की वहीं घूमती रहती है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। और भी कई कारण हैं जिनके आधार पर कोई को तो स्मृति हो सकती है आत्मा को देखने की, प्रैक्टिस हो सकती है, अनुभूति हो सकती है। वो अनुभूति ऐसी भी होगी कि दूसरे भी अनुभव करेंगे, देखने मात्र से ही उन्हें अनुभव होगा कि ये याद में ज्यादा रहने वाला है। तो नंबर वार होते हैं, इसमें ये नहीं है कि ऐसा क्यों होता है हमको, किसी को होता है किसी को नहीं होता है। कोई ऐसे भी होते हैं कि जितना माया का पसारा बढ़ता जाता है, माया की परीक्षाएं बढ़ती जाती हैं, उतना ही उनका पुरुषार्थ और तीव्र होता जाता है। तो सब नंबर वार हैं, बाकी अपना अपना अनुभव है। ये भी हो सकता है कि वर्तमान में कोई अभी अनुभव में नहीं है और आगे चलकर के अनुभव में आ जाए। 63 जन्मों का हिसाब किताब चल रहा है, रील घूम रही है, पुरुषार्थ करने में जो जितने तीव्र हैं तो पुरुषार्थ की जो रफ्तार है वो हमको सफलता में आगे बढ़ा सकती है कभी भी। जो वयोवृद्ध लोग हैं उनको फंक नहीं होना है कि हम तो यज्ञ के आदि में नहीं थे इसलिए हम तो कमजोर ही रहेंगे। नहीं, भले यज्ञ के आदि में न हो फिर भी ये तो हो सकता है कि 63 जन्मों में राम वाली आत्मा के साथ जास्ती रहे हो। तो वो संग का रंग काम नहीं करेगा। कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि जास्ती न रहे हो, थोड़ा बहुत रहे हो। थोड़ा बहुत रहे होंगे तो ये जो वर्तमान ब्राह्मण जन्म है इसमें भी मिलना जुलना होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। कम रहे होंगे तो मिलना जुलना कम होगा। ओम शांति।